ओम शांति। आप सभी सवेरे से लगातार सुनते जा रहे हैं, ऐसा ना? स्कूल की तरह सुनाने वाले टीचर्स बदलते रहते हैं, मगर आप सभी सुनने वाले वही बातें सुनते रहते हैं। स्कूल की याद तो नहीं आ रही बचपन में? हाँ, एक पीरियड हुआ, दूसरा हुआ, फिर साइंस हुआ, फिर हिस्ट्री हुआ। हर इंसान के जिंदगी में एक मौका जरूर आता है जहां पर वो व्यक्ति अपने आप से बैठकर अपने आप को समझ सके, अपने आप को जान सके। हम जो भी हैं या जो भी थे, इसे और बेहतर बन सके, इसके लिए एक मौका हमें मिलता है, और वो भी बहुत भाग्यवान है जो बहुत जल्द मिल गए। क्योंकि जब हमारे किए हुए का सजा हमें मिलता है और हम भगवान से ये पूछेंगे, ये मुझे सजा क्यों मिल रहा, और आप ये कहते एक मौका मुझे दे देते तो मैं सुधर जाता, और आप भगवान होकर के मुझे मौका ही नहीं दिया तो मैं सुधरूंगा कैसे? तो भगवान भी तो बहुत चतुर है ना, तो वो अब मौका दिया है ताकि आप पूछे नहीं कि मुझे एक मौका मिलता तो मैं सुधर जाता। तो ये मौका वो है जहां पर हम अपने आप को जितना हम चाहें ऊंच अपने आप को बना सके, जितना हम चाहें अपने आप को बदल सके, सुधार सके, ऊंच बन सके। पर ये बड़ा विचित्र बात है, संसार में से कौन होगा जो अच्छा बनना नहीं चाहता होगा? ऐसा कोई है? खराब बनना चाहते हैं ऐसा कोई होंगे तो नहीं ना? पर चाहते जो है वो बन नहीं पा रहे हैं। मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूं, मगर वो करने की क्षमता मुझ में नहीं है, जिसके वजह से हम चाह करके भी कर नहीं पा रहे, चाह करके भी नहीं बन पा रहे हैं। और इसलिए यहां इस स्थान में बाबा ने हम सबको बुलाया है, जहां पर हमें वो शक्ति प्रदान होता है, बाबा हमें वो ताकत प्रदान करते हैं जहां पर हम जो चाहते हैं वो हम बन सके। और अभी जो हम बन रहे हैं वो केवल मात्र अब के लिए नहीं, बल्कि वो फ्यूचर के लिए भी है। एवं यहां चार दिन रह रहे हैं, या आप यहां से प्रस्थान होने के बाद भी थोड़े समय के लिए रहते वो बात नहीं, या इस जन्म के लिए रहते इतना मात्र नहीं, इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो अगले हमारे जर्नी जो होगा वो कंटिन्यू होता चला जाएगा। इसलिए इसमें बहुत शक्ति है, और ये मौका बहुत ही अच्छा, आप आई डोंट नो आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि ये मौका कितना इम्पोर्टेंट हम सबके लिए है। आपको मालूम है जिंदगी में मौका बहुत कम आता है, अच्छे मौका, और एक बार हाथ से निकल जाता है फिर नहीं आएगा। इसलिए जो हाथ आया हुआ मौका उसको जाने नहीं देना, बाद में आप ये नहीं समझ, अरे आया तो था पर यूं ही चला गया, किया तो कुछ भी नहीं हमने, थोड़ा सा गए बस देख लिया सुन लिया, पर इसका जो पूर्ण रूप से इसका लाभ लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए रह जाता। ओके, या यू हैप्पी? वेरी हैप्पी? Little happy? Very happy. Okay, आज हम ये जो टॉपिक हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं वो हर एक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधी है बात है, क्योंकि इस संसार में कोई भी इंसान अकेला नहीं है। ठीक बात है, आप अकेले रह सकते हैं। आप में से कौन कौन है जो अकेले रह रहे हैं, हाथ खड़ा करिए जरा। अकेले रहते हैं, अपने अपने घर में अकेले हैं, कोई नहीं, सब परिवार है, कोई अकेला नहीं रह रहा। वाह, तो इस क्लास की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, वैसे संसार में कोई अकेला तो रह नहीं सकता। हर इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। समझो कोई अकेला रहता भी है, ऐसे दुनिया में है ना, काफी लोग अकेले अकेले रहते, पर हमेशा वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। दूध वाला आया, दूध दे के जाएगा, सब्जी वाला आएगा, पेपर वाला आएगा, दूसरा आएगा, वो काम करने वाले आएंगे। अब उनके ऊपर तो डिपेंडेंट तो है, अब अकेला वैसे तो नहीं रह सकते। अच्छा, मुझे एक दूसरा छोटा सा प्रश्न पूछना है, पूछ सकती हूँ? है ओके, आप सभी परिवारों में रहते हैं, ठीक है, परिवारों में रहते भी अकेला महसूस कौन करते हैं? यह है तो सीक्रेट। परिवार चार लोग, छह लोग, दस लोग के साथ रह रहे हैं, फिर भी अकेलापन महसूस होता है, ऐसा किसको होता है? गुड, महसूस होता ऐसा कभी? खैर, ये तो सीक्रेट बात, तो पब्लिक में पूछ, हाथ कैसे उठाएंगे भाई, रहना तो उसी के साथ है, वो देख लेंगे हाथ, फिर तो अच्छा है, आप नहीं हाथ उठाओ, बाद में मेरे को बोल देना। हाँ ओके, इस संसार में हर इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरडिपेंडेंट है। नो ह्यूमन इज एन आइलैंड, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। और ये संसार बना ही ऐसा है, प्रकृति पुरुष और परम पुरुष का ये पूरा खेल है। प्रकृति तो हम देखते हैं, नेचर है, नेचर के बगैर भी तो हम नहीं रह सकते ना। और हम सब पुरुष हैं, यानी इंसान है, पुरुष यानी आत्मा इस शरीर सहित, ह्यूमन बीइंग्स, और परम पुरुष ऊपर वाला। तो ये पूरा ही जो खेल है तीन चीजों से बना हुआ है। एक भी ना हो तो खेल ना चल सके। हाँ, इसमें से एक भी मिस होता हो फिर खेल का कोई मजा ही नहीं, खेल चल ही ना सके। इसलिए हम सभी ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। अभी भगवान है ऊपर वाला, हम नहीं है तो वो क्या करेगा? अब हम सब इतने हैं, वो ऊपर वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम भी हैं, भगवान भी हैं, मगर ये खेल के लिए कोई प्रकृति नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? हाँ, सो वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, इंटरडिपेंडेंट, राइट? सो रिलेशनशिप के बिगर नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए जरूर हैं, बट इतनी बड़ी दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया कितनी बड़ी है, छोटी है कि बड़ी? हाँ, बड़ी है। इस सेशन में आधा आप बात करेंगे, आधा मैं बात करूंगी, ठीक है? क्योंकि हर सेशन में यहां वाले ही बोलते रहते हैं, आप चुप रहते हैं, पर इस सेशन में आधा आप बोलेंगे, आधा फिर हम बोलेंगे। ओके, मदद करेंगे आप? ठीक है, आई नो, आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट स्लीप। ऑल राइट, ओके, Just tell me one thing. ये सारी दुनिया किस पर टिका हुआ है? One thing. Second thing. What is the most? इस संसार में सबसे ज्यादा नाजुक चीज क्या है? हाँ? सबसे नाजुक, very very fragile, बहुत नाजुक. Yeah? What else? Huh? Feelings. Rishta. You're all right. That's true. Sabse zyada nazuk cheez hai insaan ki emotions. Insaan ki jo bhavnaye hai, emotions hai, आपके दिल है, बड़ा नाजुक है. दिल का मतलब हार्ट वो नहीं जो आजकल सर्जरी करते हैं, रियल निकाल देते हैं, दूसरा डाल देते हैं, फिर भी जिंदा है इंसान. नकली वाला हार्ट लेके भी जिंदा है, वो हार्ट नहीं. यहां हार्ट का मतलब आपके फीलिंग्स. ये बड़ा नाजुक है, पता नहीं कब टूट जाए. और सबसे डेंजरस बात यह है, टूट बहुत जल्दी जाता, मगर जोड़ने में बड़ा समय लगता है. आप ये आजकल कुछ कुछ है ना, वो चिपकाने वाले आपके नेपाल में भी हैं चिपकाने के लिए? हाँ, फेविकॉल. बहुत सारी चीजें हैं. और पता नहीं, वो तो छत भी चिपक जाता, दीवारें भी चिपक जाते, चीजें भी चिपक जाएंगे, यहां तक कांच भी चिपक जाएंगे. मगर ये जो भावनाएं टूट जाते हैं ना, दिल एक बार टूट जाता बड़ा मुश्किल है उसको चिपकाना. और टूट बहुत जल्दी जाता है, पता नहीं क्या कहने से किसका दिल कब टूटे पता ही नहीं चलता. इट्स वेरी फ्रेजाइल है कि नहीं? और संबंध किसको कहते हैं? व्हाट इज रिलेशनशिप? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. फैंटास्टिक, ये तो नई बात मैं सीख रही हूं. ग्रेट. भावनाएं, हाँ, बहने बड़ी अनुभव है, भाई लोग लगता है को कुछ. क्योंकि सारे आंसर्स इस तरफ से आ रहे हैं, इधर से तो कुछ. हाँ, एक्सक्यूज मी, अटैचमेंट. ओहो, अक्सर करके हम ये समझते हैं जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, ये जो हमें जन्म देते हैं, ये जिनके साथ हमारा शादी होता या व्हाटएवर, और एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ रह रहे हैं, साथ सो रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा संबंध है. पर आप सच में ये मानते हैं कि एक साथ रह जाने से, एक ही छत के नीचे रह जाने से कोई कोई परिवार बन जाता, कोई संबंध बन जाता? आई डोंट थिंक सो. मैं आज जो भी आपको एग्जाम्पल्स या कहानियां बताऊंगी, ये मैं हर सेशन में अक्सर बताती हूं, बिकॉज इट्स वेरी मच कनेक्टेड विद दिस सेशन. एक पति पत्नी कुछ समय पहले आए थे, काफी मोर देन मिडिल एज. तो वे लोग बहुत अच्छे, उनके फैमिली सेटल्ड, एवरीथिंग इज सेटल्ड, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं. और यहां पर वे लोग योग सीखने आए, दो चार सेशंस हुए. तो वो पत्नी, वो पति कहता है, वो अपनी पत्नी को दिखा के कहता है, इस औरत के साथ मुझे 40 साल हुआ, मैं 40 साल से इस औरत के साथ रह रहा हूं, पर अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये उनके बच्चे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, पर ये दोनों अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और वो पत्नी भी कहती है, हाँ बहन जी, मैं भी तो इस आदमी के साथ 40 साल से रह रही हूं, मैं भी नहीं समझती। तो था मना वो लोग यूं ही कहें, वो भाई तो बड़ा सीरियस था कहने में, मगर जब मैं सोची इट वॉज रियली समथिंग वेरी डीप। सचमुच में ऐसा संभव है कि 40 साल तक एक साथ रहें और लोग एक दूसरे को समझ ही ना पाए, ऐसे कैसे फिर हम कहेंगे कि ये परिवार है या संबंध है? बस दे आर जस्ट लिविंग। वो लोग सिर्फ एक छत के नीचे 40 साल इकट्ठे रह रहे हैं, मगर एक दूसरे को अभी तक समझे ही नहीं। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि इसको क्या कहें। यसी हम बाहर से एक दूसरे को कहते, ये मेरे ना भाई हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे फलाने हैं, बच्चे हैं, वो है तो सही, मगर हाउ मच यू आर कनेक्टेड इनसाइड, अंदर से हम कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम कितने एक दूसरे को समझ रहे हैं, या अगला व्यक्ति मुझे कितना समझते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, मोस्टली आजकल ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी दिल की बात पूरा कह भी नहीं सकते, अपने परिवार वालों के साथ हम कोई बात शेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक डर है। डर किस बात का? पता नहीं क्या समझे। यदि मैं बोलूंगा अपनी पूरी दिल की बात, मैं बताऊंगी, क्या वो अगला व्यक्ति समझेगा? इससे अच्छा न बोले, क्योंकि ये बोलने से फिर मेरा संबंध ना बिगड़ जाए, वो गलत ना समझ बैठे। इसलिए वो डर के मारे अपने दिल की बातें अपने ही परिवार वालों के साथ शेयर भी नहीं करते, डर है। अब एक परिवार संबंध के बीच में यदि डर का दीवार बना हुआ होगा, क्या उसको संबंध कहेंगे? क्योंकि आप खुल के बात भी नहीं कर पा रहे, बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कह पा रहे, पति अपने पत्नी को नहीं कुछ बात कह पा रहे, और भाई बहन को कुछ नहीं कह पा रहे, यू नो दे आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? अपने परिवार को नहीं बोलेंगे तो पड़ोस को तो नहीं बोलेंगे ना, यू सी। सो रिलेशनशिप में डर पैदा क्यों होता है? क्योंकि आजकल के जो रिलेशनशिप एक बिजनेस बन गया है, यू नो व्हाट इज बिजनेस? आप मेरे पति हैं, ओके? तो पति है तो आपको यही करना है, ऐसा ही रहना है। आप मेरे पत्नी हैं, तो पत्नी होने के नाते आपको यही करना है, आपको ऐसा ही रहना है। क्यों? पत्नी जो है आपको इतना भी नहीं कर सकते, आप मेरे पति हैं ये भी नहीं कर सकते। तो हम एक दूसरे के लिए इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अगला व्यक्ति वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाएगा तो ऐसा लगता है कि ये कैसा पति है, अरे इससे तो वो अच्छा है, देखो ये पे कैसी पत्नी, ये भी तो नहीं कर सकती है वो, और बच्चा मेरे मार्क्स इतना है वो भी नहीं ला पाएगा, तो ये इससे तो ये बच्चा ही नहीं है मेरा। तो हम एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर इतना 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 अपेक्षाएं रखते हैं, अपेक्षा पूर्ण नहीं होता, रिश्ते का कोई महीना ही नहीं रहा। ये मिलेंगे कुछ तो आप मेरे कुछ हैं, जो मैं चाहती हूं मुझे वो नहीं मिलता है तो आप मेरे कुछ है ही नहीं। ये गिव एंड टेक को बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस कहां होता है? दुकानों में। अभी आप घर में रहते हैं ये दुकान में, परिवारों में रहते हैं ये बिजनेस सेंटर में रहते हैं, ये आप खुद सोचिए। हम ये भी नहीं सोचते अगला व्यक्ति कर भी सकता है कि नहीं, हम ये भी नहीं सोचते हैं अगला व्यक्ति के सामने कोई लिमिटेशंस होगा, उनके भी तो कोई हदें होंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों की अच्छाई, उनकी बुराई, उनकी मुश्किलें, उनकी लाचारी हम कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपना चाहते हैं, इसलिए कि आप मेरे कुछ लगते हैं। व्हाट इज दिस? और जब भी हम रिलेशनशिप की बात कहते हैं, हर रिलेशनशिप में प्यार होता है, बराबर? या देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट लव। एंड जैसे कि समबडी सेड अटैचमेंट, हमें अक्सर कर ये आई डोंट नो इफ यू कॉल इट एज, उसको गलत फहमी कहें या प्रॉपर ज्ञान की कमी कहें, हम इस शब्द का अर्थ भी नहीं समझते, यू नो। प्यार हमको ऐसा, हम ये समझते हैं प्यार माना जैसे ये चीज है, ओके? ये किसका है? मेरा है, ये मेरा पेन है, मैंने खरीदा है, मेरा है, तो मेरा है तो ये सिर्फ मेरा अधिकार है, आप इसको हाथ पे नहीं लगा सकते, और मैं ये जहां रखूंगी ये वहीं रहेगा, ये मेरी, इट्स टू मी, मैं इसको फेंकू, इसको रखू, ये जो भी करूं ये मेरे ऊपर है क्योंकि ये मेरा है। अब ये तो पेन है ना, इसको फेंको, कुछ करो, इसको तो कोई इमोशंस तो है नहीं, पर ऐसे ही एक इंसान के साथ ट्रीट करते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, तो इसको पकड़ के रखेंगे पेन की तरह, ये वही रहेगा जो मैं रखूंगी, ये वही करेगा जो मैं कहूंगी, ऐसे उनको पकड़ के रखेंगे, वो पेन की तरह तो नहीं रह पाएंगे ना, टूट जाएगा ना। इसलिए इंसान को इंसान की तरह यदि हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और यहां तक भी कि जिनसे हमें बहुत प्यार है उनसे नफरत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि यू नो आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द वर्ड बॉन्डेज, बंधन शब्द आपने सुना है, बंधन में दुख बहुत होता है, लाचार होते हैं, न छोड़ सकते न पकड़ सकते, पता नहीं क्या करें, कैसे हैं, हाँ जी ठीक है, घर में सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। अभी नौकरी आई, करना तो है भाई, क्या करे, परिवार क्या करे, अब आ तो गए, क्या करे, सिर तो दे दिए, हाँ जीना तो पड़ेगा, इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, खुशी, हाँ खुशी से, बंधन, लाचारी, क्या कर, अब कुछ कर तो नहीं सकते, फंस गए भाई हम, वी आर ट्रैप्ड। अब इस फंसने में कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि फंसे आप खुद हैं, हम खुद चाह के फंसे हुए हैं, और जो व्यक्ति खुद चाह के फंसता है कोई कुछ कर नहीं सकता, ये बंधन है। इसको प्यार नहीं कहते हैं, इसको मोह कहते हैं। मोह में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे पकड़ के, जकड़ के रखता है जैसे कोई वस्तु को पकड़ के रखते हैं। मोह वो है जहां एक दूसरे के प्रति बंधन महसूस हो, मोह वो है एक दूसरे के प्रति न छोड़ सकते न पकड़ सकते, विवश होकर के, लाचारे होकर के जी रहे होते हैं, वो मोह है। कुछ कह नहीं सकते, कहे बिगर रह नहीं सकते, फंस गए भाई, ये है मोह। पर प्यार में खुशी होती है। ईश्वर को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से फॉर गॉड? गॉड इज लव, ऐसे कहते हैं ना। ईश्वर प्यार का सागर है, ये थोड़ी कहते हैं गॉड इज अटैचमेंट, परमात्मा मोह का सागर, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि मोह में दुख है, लाचारी है, विवश है, बंधन है, और प्यार में सुख है। और प्यार क्या है कि प्यार भगवान के साथ तुलना क्यों किया गया है, क्यों कि प्यार माना सिर्फ देना, वहां लेना नहीं होता। ईश्वर प्यार का सागर इसलिए है, गॉड इज लव बिकॉज ही जस्ट गिव्स, वो सिर्फ देता है, लेता नहीं है। लेता है, यदि भगवान लेना शुरू करेगा कोई आप लोग नहीं देंगे। आप लोग वहां पर जाकर के वो मंदिर में वो चढ़ाते हैं ना, नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान खाना शुरू कर दे तो फिर आप चढ़ाएंगे? कोई नहीं चढ़ाएंगे। ओ नेपाल में एक सरोवर है ना जहां पर वो दूध डालते हैं, हाँ विष्णु के वो है जहां पर दूध डालते हैं, ऐसा कुछ है ना, हाँ पशुपति के, तो वो दूध पीना शुरू कर देगा फिर आप लोग डालेंगे दूध? कोई नहीं डालेगा। आप इसलिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो क्योंकि आपको मालूम है भगवान खाएगा नहीं, वो देगा। ओके, देने वाला दाता है, देने वाला भगवान है। पर हम इंसान प्यार के नाम से लेते हैं, हमको ऐसा लगता है कि प्यार माने सिर्फ लेना है, सिर्फ लेना है। अरे लेते ही लेते देने वाला देगा कितना, क्योंकि वो तो इंसान ही तो है, आप कितना दोगे? पर हमको ऐसा एक मानसिकता बन गया है कि इट इज मीन्स जस्ट टू टेक, बट इट्स नॉट टू टेक बट टू गिव। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे फिर प्यार खत्म होता चला जाएगा। देखा, मैंने इतना बार इसको मदद किया, इतना बार मैं अपना भी निकाल के इसको दिया, पर ये पूछा तक नहीं। अरे एक बार भी नहीं पूछा। हम इसके घर गए थे, ये भी नहीं बोला बैठो, बैठो भी नहीं बोला, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैंने दिया और उसने मेरे को नहीं दिया, है ना, इसलिए आपको बहुत बुरा लगा। चाय भी नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं बोला, और हमने पता है कितना दिया, कितना दिया। आप जब तक 20 लोगों को नहीं बताएंगे आपका पेट नहीं भरेगा, बोलते जाएंगे मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, और वो नहीं दिया, मैंने दिया, वो नहीं दिया। अरे वो नहीं दिया भाई, मैंने दिया और मैंने अपना पेट काट के दिया, पता नहीं आपने कितनी बार बोलेंगे, फिर भी आपको वो तृप्त नहीं होंगे क्योंकि आपने दिया है ना, इसलिए एंड यू आर नॉट गेटिंग इन रिटर्न। इसलिए इस संबंध में असंतुष्टि रहेगी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको अंदर से तृप्त नहीं महसूस होगा कि हमने दिया और उनको दिया, आपको खुशी नहीं होगी, बल्कि आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया, क्योंकि मैं एक देता उधर से 10 मिलता तो खुशी होती, और मैंने दिया ही दिया और वहां से कुछ मिला ही नहीं तो लॉस हुआ ना। तो इसको क्या कहेंगे, संबंध की बिजनेस। अब आप बोलिए कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स क्या है, बोलो नहीं, आप मन में सोच लेना, ठीक है, यू अंडरस्टैंड बेटर इसको क्या कहेंगे, हाउ मच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम प्यार की बात करते हैं, लव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अदर वैल्यू एंड दैट इज रिस्पेक्ट। यदि आप ये कहते हैं कि फलाने से मेरा बहुत प्यार है और उस व्यक्ति के प्रति मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसको प्यार नहीं कहते, यू नो, बिकॉज लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, इवन द स्मॉल वंस नीड रिस्पेक्ट। मैं किसी परिवार में गई थी, वहां एक 5-7 साल का बच्चा आया, आते ही उसकी मम्मी शुरू हो गई, तुम ये करते हो वो करते हो, जाओ 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 ये करके ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चा ने कहा, मम्मी आप ये दीदी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरे को जो भी बोलना है अंदर कमरे में आके अकेले में बोला करो, इतने लोगों के सामने क्यों बोलते हो? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, देखो है तो बच्चा ना, वो तो मम्मी है, वो तो कुछ भी बोल सकती है, पर हर मम्मी पापा यही समझते मैं बच्चे को कुछ भी बोल सकते हो, पर वो भी तो एक इंसान है, ही नीड्स रिस्पेक्ट। वो लगता है जो भी बोलना मुझे बोलो बेशक, पर अलग बोलो, सबके सामने नहीं बोलो क्योंकि ये मेरी इंसल्ट होगी है ना। वो कोई भी हो, वो नौकर हो, छोटा हो, बड़ा हो, व्यक्ति को प्यार सिर्फ पर्याप्त नहीं होता, प्यार के साथ इज्जत बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को इज्जत मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। आपको कहे अरे आप तो परी की तरह है, आप क्या अच्छे लग रहे हो, आप तो देवता जैसे, आपको लगे अरे वाह मैं क्या हूं, बड़ा खुशी खुशी होगी कि नहीं। आपको लगे अरे आप इतने बेवकूफ है, कोई काम की नहीं, आपको लगे ये क्या हो गया, यू नो यू फील इट्स नॉट मी, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर आत्मा को रिस्पेक्ट बहुत जरूरत है। तो यदि आप कहते हैं प्यार है और रिस्पेक्ट नहीं, तो प्यार नहीं है, अधूरापन महसूस होता है। और इस रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार नहीं, तब भी अधूरा होता है, ठीक बात। तो ये प्यार और रिस्पेक्ट दोनों, सम्मान और प्यार दोनों जुड़ा हुआ है। और ये दो बातों के साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है विश्वास। यदि आप ये कहते हैं मुझे इस व्यक्ति से बहुत प्यार है और वो कहते हैं पर मैं विश्वास नहीं करता, तो उसको प्यार तो नहीं कहेंगे ना। और आप ये कहते हैं मुझे विश्वास है पर प्यार नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जिनसे विश्वास होगा वो प्यार जुड़ा हुआ होता है। और ये सारी दुनिया एक विश्वास के आधार पर ही टिका हुआ है, टिका हुआ है ना। बिगर विश्वास के तो कोई कुछ कोई काम नहीं चल सकता। और यदि दुनिया ही विश्वास पर टिका हुआ हो और आप अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर रह क्या गया जिंदगी में, तो कोई बचा ही नहीं कुछ भी। आज हमारे इंडिया में या आपके देश में भी होता होगा, घर परिवार बहुत बिखरता जा रहा है, स्प्लिट होता जा रहा है, यहां पर सिंगल पेरेंटिंग शुरू हो गया है, विश्वास नहीं, छोटी छोटी बात में, बात कुछ भी नहीं, बात आएगी चली जाएगी, पर ये जो रिलेशनशिप है यदि वो बहुत कमजोर है, फिर वो छोटी बात पर भी टूट सकता है। यदि ये अंदर का विश्वास बड़ा बलवान है, मजबूत है, बड़ी बड़ी बातें भी आ जाएंगी ना, पर हमारा विश्वास नहीं टूटेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। अभी आप एक दूसरे के साथ जो भी संबंध है, किस आधार पर है? बातों के आधार पर, चीजों के आधार पर, बीती हुई बातों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, पैसे के आधार पर है या विश्वास के आधार पर है? ये आप खुद अपने अपने साथ, जिनके भी जिनके साथ संबंध है, वो आप खुद समझिए। पर यहां बाबा हमें कहते हैं, लोग कहते हैं विश्वास अंधा होता है, पर आप समझते विश्वास अंधा होता है, हा? है कि नहीं? क्या वो सो तो नहीं रहे सभी? ओके, कुछ लोग खुले आंखें सोते हैं, तो इसलिए मुझे लगा अभी खुले तो हैं सबकी आंखें, मगर पता विश्वास अंधा है कि क्या? नहीं तो फिर क्या है? हाँ, बट यू थिंक इट्स ब्लाइंड। जो कोई भी लव को ब्लाइंड समझा है, सब गिरे हुए गिरते हैं, एवरीबडी फॉल, बिकॉज इट्स नॉट ब्लाइंड। ब्लाइंड नहीं है, समझ है। जहां पर अंधापन से आप कोई काम करते हैं ना, वहां गिरेंगे, बद्धों का खाएंगे, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो टोखर खाएगा ना। पर यहां बाबा कहते हैं समझ है, प्रकाश है। विश्वास ऐसी चीज है कि व्यक्ति के अंदर जागृति लाता है, आंख खोल देता है। दो दोस्त थे, ये रियल स्टोरी, रियल बात है। दो लोग थे, बहुत गहरे दोस्त थे, इतने गहरे दोस्त, वो छोटेपन से साथ साथ ही पढ़े, बड़े हुए, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर उन लोग बिजनेस भी एक साथ शुरू किए। बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, खा उनके पसंद सब कुछ जैसे एक जैसे, भाइयों से भी गहरा दोस्ती थी उनके आपस में। 20 साल ये लोग इकट्ठा रह करके बिजनेस किया। वन फाइन डे अनफॉर्चुनेटली एक दोस्त सब कुछ इसका लेकर के भाग गया। हाँ, जितना भी बिजनेस का इसका पैसे जो कुछ भी था सब कुछ लेकर के वो भाग गया। भाग गया तो दूसरा जो दोस्त था वो सोचता रहा, ये कहाँ चला गया? ना पैसा है, ना बिजनेस ठीक चल रहा है, ना किसी पर साइन करते हैं तो कुछ मिल नहीं रहा, चेक सारे बाउंस हो रहे हैं, बात क्या है? तो कुछ समय के बाद इसको पता चला ये तो पैसे लेके भाग गया है। तो वो कुछ ही समय से मन सेंटर पर भी आता रहा। तो आकर के कहता है, बहन जी मैं अब समझा कि वो कौन है। मैंने कहा क्या, इतने समय क्या समझता रहा? कहता नहीं, अब तक जो समझता रहा वो गलत था, मैं अब समझा कि वो कौन है। वो मेरा दोस्त नहीं है, धोखेबाज है। इतने साल के बाद वो चलता रहा और अगला व्यक्ति को समझा तक भी नहीं। इसको तो ब्लाइंड ही कहेंगे ना, तो ब्लाइंडनेस में फॉल्स। यहां पर हमें समझ है कि अगला व्यक्ति कैसा व्यक्ति है और उस अनुसार हम उनके साथ मेल मिलाप कर करके चलना, विश्वास रखना, ये समझ है। इट्स नॉट ब्लाइंड, ये नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है। मेक सेंस टू यू और नो? इट मेक सेंस टू यू? या सो इट्स विजडम। या एंड व्हाई डू वी ऑलवेज मेक अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स? अब अगला व्यक्ति इतने साल रह रहे हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? आई डोंट नो, पता नहीं ये ऐसा क्यों, मैं कुछ कहती वो कुछ कह के चला जाते, पता नहीं ऐसा क्यों करता है। मैं कुछ कहती वो समझता ही नहीं, क्यों नहीं, मेरी बात को कोई मेरे घर में समझते ही नहीं है। अरे मैं उनके अच्छे के लिए कहती हूँ, उनके भला के लिए करती हूँ, तो भी वो लोग नहीं समझते, गुस्सा करते। तो हमेशा ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है परिवारों में, संबंधों में। ये मिस बहुत खराब है, इस मिस को कहीं भी आने नहीं देना। एंड दिस मिस, ये मिस हर जगह होती है, ये मिस। और वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। हमेशा हम एक दूसरे को गलत समझते हैं। अच्छा बोलते हैं तो हम गलत उठाते हैं, गलत समझते हैं तो गलत लगता है। यू नो इट्स ऑलवेज वी डोंट अंडरस्टैंड, हम एक दूसरे की भावनाएं नहीं जानते हैं। और क्यों नहीं जानते हैं? कुछ कारण? आप तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। विश्वास की कमी, दैट्स ट्रू। और भी कुछ? ब्यूटिफुल, कम्युनिकेशन गैप। और भी कुछ? हाँ, अज्ञान का कारण, दैट्स ट्रू। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि व्यक्ति खुद को ही नहीं समझता, खुद को ही नहीं जानता, तो अगले व्यक्ति को जानेगा कैसे? अब आपके पूरे दिन में कितने बार मूड्स बदलते हैं? बदलते कि नहीं? आप जब से भी बिस्तर छोड़े हैं अब तक, आपको अभी अभी लगता है ये चाहिए, अभी अभी लगता नहीं चाहिए, अभी अभी अच्छा लगता, अभी अभी नहीं अच्छा लगता है, अभी अभी आप ये सोचते हो, अभी अभी वो सोचते हो, तो आप खुद अपने ही मूड्स, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ही मन को आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगला व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है, अगला व्यक्ति वो ऐसा क्यों करता है, आप कैसे समझोगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए यदि अगला व्यक्ति को समझना हो, सबसे पहले आप खुद को समझने की कोशिश करिए। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी मूड्स, आपकी बिहेवियर ऐसा क्यों है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप खुद समझिए। तब हमको न केवल दूसरे व्यक्ति को हम समझ सकते हैं, दूसरे व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है उसको रिस्पेक्ट भी हम कर सकते हैं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जेन्युइन है. मेनी टाइम्स वी डोंट रियली रियलाइज समवन इज जेन्युइन. यू सी, आप में से ये जो उबासी ले रहे हैं ना, वो भैया कितना उम्र है आपका? सबसे बुजुर्ग नहीं, नहीं वो उबासी जो ले रहे थे, आप जो पीछे मुड़ के देख रहे हो, भैया आपको उम्र क्या है? 61. अच्छा, इससे बुजुर्ग कोई है आप में से? मोर देन 61 कौन है? हा? कौन 87 वाला? आप 87 ईयर्स के हैं, वेरी गुड, गिव हिम अ बिग हैंड. बड़े उम्र के हैं, बहुत अच्छी बात है. हिंदी हिंदी आता है आपको? हिंदी आता है? नहीं आता है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. और ये सफेद बाल भाई, आपका क्या उम्र है? हाँ, आपका उम्र क्या है? 35, थोड़ी 75 है ना? हाँ, 58 ईयर्स. आइए इधर आइए, 70, आइए इधर आइए. आ जाइए, आओ आओ आइए. यस यस, यू शुड गिव अ बिग हैंड. आप तो जलगांव के ही होंगे, ये टोपी जो पहना है वो जलगांव का है, ठीक है? आप कहाँ के हैं? नेपाल के. वो नेपाल वाला टोपी कहाँ? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हिंदी जानते हैं आप? आप 75 ईयर्स के. आप कितने साल के? 58. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. आप 75 ईयर्स, बिग एज है. 75 ईयर्स माना 3/4 सेंचुरी, ठीक बात? माना इन्होंने 75 दिवालियां देखी हैं. 75 दिवाली देखी है ना, बहुत अनुभवी हैं. क्या नहीं उन्होंने दुनिया में देखा होगा, देखा होगा. मगर एक आपके पोते हैं, पोते हैं, उनकी शादियां तो नहीं हुई?
नहीं.
होने वाली होगी, होने वाली होगी है. अच्छा, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है?
फिरोशी.
ओके, आप
टीचर.
ओहो, वेरी गुड. आप अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में आप कितना जानते हैं वो बोलिए.
क्या
अभी आप अपने बारे में, खुद के बारे में क्या क्या जानते हैं वो बोलिए. आगे आइए.
मैं दूसरे के भले के लिए सब सोचता हूँ.
दूसरों की बात करना ही नहीं अभी. मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं कुछ माना, आपके संबंधी बातें कुछ नहीं करना. आपके अलावा जो बातें हैं वो नहीं करना. सिर्फ आप अपने बारे में बोलना, आप क्या है, आप क्या है, सिर्फ वो बोलना.
मैं क्या कर कह सकते इसमें बारे में?
आप माइक क्यों वापस दे रहे हैं?
बोलो क्या. मैं कुछ नहीं कह सकता.
Give him a very big hand. That is the truth. सच बात तो यही है. आपका क्या नाम है? अरे वाह, लक्ष्मी, तो बड़े धनवान होंगे आप. खैर, आप अपने बारे में, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं?
भौतिक रूप से हम एक मानव हैं, और भौतिक प्रक्रिया अनुसार हम अपने माँ के गर्भ से निकले हैं.
अरे वो नहीं. ये तो सभी माँ के गर्भ से ही निकलते हैं ना. आप अपने बारे में जो बात जानते हैं वो बताइए.
तो हम अपने बारे में, हम एक मानव, भौतिक रूप से एक मानव हैं, जन्म मरण मन में रहते हैं, मन जन्म और मृत्यु में हम रहे, हम रह रहे हैं. और आध्यात्मिक विचार से हम एक आत्मा हैं, और आध्यात्मिक विचार के आधार पर हम अमर और अजन्मात्मा माने आत्मा अजर अमर है।
कोई बात नहीं, गिव हिम अ बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। प्लीज देखिए कितना मुश्किल है बेचारे, वो भाई साहब ने माइक के वापस लौटा दिया, कहते मैं क्या बताऊंगा अपने बारे में। यदि मैं आपको ये कहूं आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या जानते हैं, अरे एक घंटे लेक्चर ऐसे देंगे या आपके घर के अन्य व्यक्तियों के बारे में बोलो, या आपके जहां काम करते हैं दूसरा टीचर, आपके प्रिंसिपल, जहां जो भी काम कर रहे हैं, आपके नौकरी, आपके फैक्ट्री, कंपनी, वेयर एवर यू वर्क, आप पूरा दिन लगाओगे, लगाओगे कि नहीं? उनके पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, चौरासी जन्म का बता दोगे। पर आप खुद की बारी जब आएंगे आपको लगता है अभी हम बोलेंगे क्या, हम क्या बोलेंगे? अरे आप खुद के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बोल सकते हैं, दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे आप? बोलने का अधिकार ही क्या रहा? पर खुद को तो जानिए। दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा ऐसे अंगुली उठाते हैं ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं मैं भी वैसे हूं। इसलिए रिलेशनशिप्स में सबसे पहली बात है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करिए एक दूसरे का। अरे अरे बिठाइए इनको आगे, आइए दादाजी, बुजुर्ग है भाई हमारे, 84 इयर्स के हैं, 86, 87, आप तो बोलते जा रहे हो एक एक। यस एक्सेप्टिंग, ठीक है बाद में। हम एक दूसरे को, जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकारने की कोशिश करें, और मैं जो हूं मैं खुद भी अपने आप को, मैं जो हूं वो जैसे हूं वैसे मैं खुद भी स्वीकार करूं। अक्सर कर हम क्या करते हैं, हमारी अच्छाई हम स्वीकार करते हैं। आपको पता है, अरे मैंने ही तो किया था, वो कितना अच्छा मैंने किया, सब ने ताली बजाया, हमने मैंने बहुत अच्छा किया। अब मेरे से कोई गलती हुई होगी ना, हमें कहा अरे वो गलती मैंने नहीं किया, उसके वजह से ऐसी हो गई। अब हम सबको गुस्सा आता है, आता कि नहीं? किस किस को यहां गुस्सा आता है? अरे भाइयों को तो गुस्सा ही नहीं आता, वाओ वंडरफुल, आता है ना? अच्छा अब हम में से कितने हैं जो ये स्वीकारते हैं, हां मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा मेरा कमजोरी है। वो कितने हम लोग मानते हैं, हम हमेशा गुस्सा दूसरों के ऊपर थोपते हैं। अरे मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये ऑरेंज शर्ट वाला भाई, इनको देखूंगे मेरे को यहां तक गुस्सा चढ़ेगा। अरे बेचारा वो क्या करता है, वो ऑरेंज शर्ट पहना है, वो उसका गलती थोड़ी है, वो जो है वैसा है, अभी गुस्सा तो मुझे आ रहा है ना, गलत मेरी है ना। अच्छा वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, पर ये झूठ जब बोलते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, यू नो। तो ये हम मानते नहीं है कि गुस्सा आना ये मेरी कमजोरी है, हमारी बुराइयां हम दूसरों के ऊपर थोपना चाहते, वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकारते नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, कभी नहीं। पर ये जब ऐसा बोलते ना मेरे से नहीं रहा जाता, ये मेरे को गुस्सा दिलाते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं। अरे दिलाने के लिए आप कोई टॉय है क्या, कोई पपेट थोड़ी है, किसी ने गुस्सा दिला दिया आपको गुस्सा आ गया, किसी ने रुला दिया आप रो दिए, कोई हंसा दिया आप हंस दिए, तो आप क्या हो, आप पपेट्स हो क्या? आप अपनी जिंदगी का, अपनी इमोशंस का आपके हाथ में है ही नहीं, किसी और के हाथ में है, और आप कहते हैं हम मालिक है। आपको पता है दो फैक्टर के हम मालिक है, घर के हम मालिक है, मालकिन है, काय के मालकिन, जबकि आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। वो रुला रहा है, वो हंसा रहा है, वो गुस्सा दिला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो आप क्या है फिर, काहे की मालिक है जी। तो जिनको अपनी भावनाओं का, भावनाओं के ऊपर ही अपना अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो मालिक तो रहा ही नहीं ना। इसलिए हमारी कमजोरियां जो हैं, किसी के ऊपर थोपे नहीं, डोंट ब्लेम अदर्स, किसी को ब्लेम नहीं करें, इनके वजह से ऐसा हुआ, उनके वजह से ऐसा हुआ। जब से ये मेरे पड़ोसी बन के आई है ना, नाक में दम करके रखा है, वैसे हम बहुत शांति में थे, जब से ये व्यक्ति मेरे डिपार्टमेंट में आया है ना, हैरान करके रखा है। हाँ, वो बड़ा तूफान है, वैसे बहुत अच्छी शांति से चल रहा। ऑल दीज थिंग्स, सो डोंट एवर ट्राई टू ब्लेम अदर्स। जो व्यक्ति जैसा है उसको समझें, क्योंकि आप उसको समझेंगे वो भी आपको समझेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये अच्छी अच्छा आदमी है। आप उसको ब्लेम करेंगे वो भी आपको ब्लेम करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है नकल करना। वो करेंगे तो आप करेंगे, मैं स्माइल करूंगी तो आप स्माइल करें, अपने आप स्माइल नहीं करते हैं। आजकल तो नहीं करते, बाकी तो नहीं पता, नेपाल में करते होंगे तो मैं नहीं कह सकती। जब तक अगला व्यक्ति स्माइल नहीं करेगा वो करेंगे नहीं, हम क्यों करें भाई स्माइल, आप तो करते ही नहीं। बल्कि हम ये सोचते हैं मैं एक बार करूंगी तो आपको 10 बार करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया था ना, आपको देख के स्माइल तो किया था, तो आप तो एक ही बार किया। अरे जब भी आप मेरे को देखो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया था आपका स्माइल। दिस इज अवर टेंडेंसी, यू सी। आप तो मुस्कुरा दो भाई, ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप इज कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कोई बात हो जाती है, क्योंकि खिटपिट तो होती है संबंधों में, कैसा भी संबंध है थोड़ा सा खिटखिट होता ही है। दो बर्तन इकट्ठा रखेंगे, चार बर्तन इकट्ठा रखेंगे, कहीं तो कहीं खड़खड़ तो होगा। संबंधों में भी जब भी कोई क्लैश होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम उसको ज्यादा करके उसको पोस्टपोन कर देते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, बात है छोटी सी मगर वो मन में रख रख के उसके बारे में सोच सोच के उसको बड़ा बड़ा होता चला जाता है, और जितना वो हम सोचते हैं बात उतनी बड़ी होती जाएगी, और जितनी बात बड़ी होगी उतना हमारे संबंधों में थोड़ा दूरियां बढ़ती चली जाएगी। जब थोड़ी सी भी बात होगी, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्या करें, कम से कम हम आपस में बैठे, अभी हमारा इनका कुछ हो गया, अरे कम से कम हम दोनों बैठे, आपका आपके मन में जो बात है वो हमें बताएं, हमारे मन में जो बातें हो वो बताएं, क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि इसमें न बोलने से क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, जैसे किसी ने कहा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट हम नहीं करते, एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करेंगे तो बिगड़ता चला जाता है, गैप बढ़ता चला जाता है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, प्लीज ट्राई टू लिसन। जब एक व्यक्ति बोल रहे हैं सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि उनके मन में है क्या। हम सुनना नहीं चाहते, हम बोलना चाहते हैं। अरे आप ही बोलते चले जा रहे, हमारी भी तो बात सुनो ना पहले, शुरू हो जाते हैं इसी में बात, जिसके लिए बैठे वो तो बात हुई नहीं, मैं तू तू शुरू हो जाता है। भगवान कितने कान दिए हैं सबको, दो, नेपाल में तो है अच्छा, और कितने मुंह है, क्यों, एग्जैक्टली क्योंकि भगवान को मालूम है ना, इनको दो मुंह देंगे बस दुनिया तो विनाश हो जाएगा है, तो इसलिए दो कान दिए भाई, जितना बोलते हो वो दुगना सुनो, कम बोलो ज्यादा सुनो। इसलिए सवेरे से लेकर के रात तक आपको बिठा के हम सुनाते रहते हैं ताकि आप सुनते रहो। हाँ, इतना दिन आप सुनाते रहे ना, अब आप सुनो। तो भगवान ने कान दो दिए हैं ताकि हम दूसरों की बात सुन सके और हमारी बात कम बोल सके। वी डोंट लिसन। बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, हम सुनते अरे बाद में। आपकी बहन कुछ कहना चाहती है, अभी मैं बिजी, बाद में देखा जाएगा। आपका अपना कोई सुनना बताना चाहते हैं, बाद में। अरे वो बाद में यदि मर जाएगा तो फिर हमको लगता, अरे वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा था, बेचारा कुछ कहना चाहता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, और इसको जो जो पसंद है मरने के बाद हम सब करते हैं। उसको ये पसंद था, ये ड्रेस पसंद था, ये खाना पसंद था, अरे 13 दिन तो इतना खिलाएंगे बेचारा, जो व्यक्ति चला गया उसको इंडाइजेशन हो जाए तो भी नहीं छोड़ते। वो अच्छा था, कितना भी उसको रहते हुए आपने इतना ख्याल नहीं रखा उसका। जब देखो आप डिमांड ही करते रहे तो अरे अभी अभी नहीं है, बाद में देखा जाएगा, ऐसे आपको उसको डांटते रहे, पर अब जब मर गया आप उसको इतना खिला रहे हो, इतना दे रहे हो, वही और इतनी उनकी अच्छी महिमा कर रहे हो। वो होता ना ये काम ना रुकता, वो कैसा भी हो पर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था पर चला गया, बेचारा चला गया। वो होता तो मुझे ये मदद हो जाता। और जब वो जिंदा था, एक बार आपने कहा उसको, भाई आप बहुत अच्छे इंसान है, आप हैं तभी तो ये काम चल रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, एक बार आपने बोला उसको? अरे नहीं बोला, मौका ढूंढते कब इसको बोले। अरे रुको, मेरे को भी मौका आएगा ना, मैं बताऊंगा। मौका ढूंढते उसको गलत बात सुनाने के लिए, पर अच्छी बात सुनाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता आपको। इसलिए अप्रिशिएट करिए, रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए। या जब गलत बात हम थोपते हैं, अच्छी बात को अप्रिशिएट भी तो करें। चाय में थोड़ी सी चीनी क्या कम हो गई, सवेरे महाभारत शुरू, इतने साल से तुम चाय बना रहे हो, इतना भी अक्ल नहीं है। अरे मैं कितने चाय में शुगर डालती हूँ, रोज बताना पड़ता है, आज देखो कम हो गया, बस हो गया छुट्टी, मूड ऑफ, घर में बच्चों को वो ये, प्लेट्स भी उड़ेगा, सब होगा। इतनी छोटी सी बात में इतना महाभारत कर दिया। अच्छा आज आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी जो भी घर की माँ जो भी है, बहुत अच्छा खाना बनाया, आप एक बार अप्रिशिएट किया, अरे आज आपका खाना बहुत अच्छा बनाया, क्या खाना बनाया आपने, आप बोलते ही नहीं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका काम है ना खाना बनाना। माता तो बड़ी खुश हो गई। रोज ताने देते हैं, हमारे छोटे हैं, हमारे बड़े हैं, कोई भी हैं, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, बुजुर्ग भी क्यों ना हो, प्लीज अप्रिशिएट करो। हो सकता है वो व्यक्ति आज बुजुर्ग है, कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये 87 इयर्स ओल्ड है, इनसे भी बुजुर्ग कोई होंगे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है इनसे कोई काम आज नहीं हो रहा होगा, पर ये है तभी तो परिवार बना, ये है तभी तो कुछ तो उनके आधार पर टिका हुआ है, ये है तभी तो किसी को तो डर है भाई हमारे घर में बुजुर्ग है। एंड यू डोंट वैल्यू दैट पर्सन, सिर्फ इसलिए कि आज वो व्यक्ति उठ बैठ भी नहीं सकता, इसलिए आपको इस व्यक्ति के लिए वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कमाई नहीं कर रहा है, इसके हाथ में पैसे नहीं है, बस गलत बात है ना ये। अरे संबंधों में, जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं होता, पैसे चला जाएगा कमाया जा सकता, इंसान चला जाएगा आप कमा नहीं सकते। एक बात याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है उसकी जगह कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं, उस व्यक्ति की तरह और कोई नहीं आ सकता। उनके होते अब 10 बातें बोलेंगे, चश्मा वाला है ना, अरे बेकार आदमी है वो, कोई वो चला जाए तो अच्छा है, इतना भी हम बोलेंगे पर वो चला जाएगा ना, आपको महसूस होगा ये चश्मे वाला भाई कितना कीमत था, ये नहीं है इसलिए सब रुका पड़ा है. सो नो वन इन द वर्ल्ड कैन फिल द स्पेस ऑफ दैट पर्सन, नो वन. इसलिए प्लीज हर व्यक्ति के लिए आप इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि इंसान है, ये कोई वस्तु नहीं है, इसकी अपनी कीमत है. और ऐसा कीमत जो चीजों से नहीं चुकाया जा सकता, ऐसा कीमत जो वस्तुओं से नहीं तुलना की जा सकती, क्योंकि ही इज अ ह्यूमन बीइंग, भगवान का संतान, भगवान का प्रतिरूप है. हर इंसान भगवान के बच्चे हैं. और हमारा क्या, क्यों, क्या अधिकार बनता किसी के लिए कुछ भी हम कह दें? आप जब आए थे, पैदा हुए थे, किस किस को लेके आए थे साथ में? पति को ले आए थे, बच्चे को ले आए थे, पत्नी को ले आए थे, भाई बहन को ले आए थे. जुड़वा भी तो एक आध मिनट आगे पीछे तो जन्म लेता है ना. चलो एक साथ आ भी गया तो क्या हुआ? उसका अपना किस्मत, इसका अपना किस्मत. हम जब आए किसी को हम साथ से लेके नहीं आए. इस संसार में आने के बाद ही हमको ये सब मिले हैं, ये सब लोग मिले हैं. और हमको जो मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं. आप कभी ये नहीं समझे, पता नहीं कहां पल्ले पड़ गए, दुनिया में इतने लोग हैं, यही मेरा पलना पड़ना था. हाँ देखो, वो अच्छी, वो अच्छी, वो अच्छी, ये सब अच्छे, पर यही मेरे पल्ले पड़ गए. हाँ पता नहीं मेरा भी क्या नसीब है, ऐसे बच्चे मिले, ये पत्नी मिली, ये पति मिला. यही ठीक है आपके लिए? यही ठीक है? हर इंसान अपने अपने कर्म अनुसार इस संसार में अपनी स्टेटस, अपनी खुशी, अपनी दुख भोग रहे हैं अपने कर्मों से. और अपने कर्म अनुसार ही लोग मिलते हैं, अपने कर्म अनुसार ही उनको दुख और सुख मिलता. इसलिए आप किसको दोषी बनाओगे? आप अपने नसीब को क्यों कोसते हो? इसलिए एवरीथिंग इस समय, राइट नाउ, जो हो रहा है, जो भी है, जैसा भी है, एब्सोल्यूटली गुड. और जो है उसको संभाल के रखिए. जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो है उसको तो ठीक रखिए. इंसान हमेशा जो नहीं है उसके बारे में सोचती, ये होता ना बहुत अच्छा होता, अरे वो होता ये और बहुत अच्छा होता, अरे जो है उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है उसका गम है. जो चीज है उसको तो देखो कि मेरे पास क्या क्या है. अरे औरों को देखो, ये भी तो नहीं है उसके पास जो मेरे पास है. फिर आपके पास जो है वो सोच करके, वो देख करके खुश रहिए. जो नहीं है उसके लिए, जो नहीं है सो नहीं है. अरे सोचे ही नहीं, चिंता तो दूर, सोचो ही नहीं. क्योंकि मुझे जो मिलना है वो मिलके रहेगा, और उसके लिए कोई संसार में कोई ताकत वो छीन नहीं सकता. जो मुझे मिलना ही नहीं, वो जिंदगी भर आप मेहनत कर लो, वो तो मिलना ही नहीं है ना. इसलिए मेरा अपना भाग्य कोई नहीं छीन सकता. जो मुझे मिलना है वो मिलके रहेगा. बी हैप्पी. जो कुछ भी मिला है, यू गॉट इट, सो जस्ट बी हैप्पी फॉर इट. यस. एंड कैन आई टेक अनदर 5 मिनट्स? इज इट ओके? नो प्रॉब्लम. क्योंकि 1 बज गया, आपको भूख लग रही होगी. नो? ऑलराइट, जस्ट 5 मिनट्स मोर. सॉरी, 2 मिनट्स? 2 आवर्स? अरे भाई मेरे में ताकत नहीं है. बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, और वो ऐसी बात है छोटी सी बात, यदि हम जीवन में इस बात को धारण कर ले, बहुत खुशी जीवन हो जाए. और वो है, किसी को कभी भी दुख नहीं दो. यदि कुछ भी आप नहीं दे सकते हैं प्लीज कुछ न दो, पर दुख तो ना दो ना। सुख नहीं दे सकते हैं मत दो, पर दुख नहीं दो, क्योंकि दुख न देना ही सुख है। हम छोटी छोटी बातें लोगों को हर्ट करते हैं, कई बार ऐसी बात शब्द भी बोल देते हैं, अगला व्यक्ति बड़ा फील करता है कि नहीं? आपको मालूम है इतना बड़ा महाभारत क्यों हुआ? एक शब्द के कारण। उसने द्रौपदी ने कहा अंधे का औलाद अंधा, उसको आया बड़ा गुस्सा, अरे मैं अंधे का था तो सही ना, इसका बाप तो अंधा था, अंधे का ही वो औलाद था, पर उसको लग गई बात, मुझे इसने कहा अंधे का औलाद, मैं अंधे का औलाद हूं। अच्छा शुरू हो गया उसको, वो बैठ गया मन में, फिर वो बढ़ता गया, रिवेंज लेने का भी भावना उसके अंदर आ गया। हाँ तो प्रतिकार इतना ऊंचाई तक बढ़ गया, तो युद्ध तक आ गया। तो प्लीज आप जब बोलते हैं एक बार सोच लीजिए, जो मैं शब्द बोल रही हूं किसी को हर्ट तो नहीं होता, किसी को दिल में लग तो नहीं जाता? क्योंकि एक बार बोल देंगे वो गलत बातें लोगों के मन में ऐसा घर करके बैठ जाएगा, फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी भी गलत बात या गलत क्रोधवश या आवेशवश या कोई भी नेगेटिव भावनाओं के वश ऐसा कभी बोल न बोले, जो अगला व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचे दिल में, और वो दिल में बैठ जाए कि इसने मेरे लिए ऐसा कहा था। किस कभी नहीं, न कर्म में दुख दे न। कई बार क्या है कि कोई बोलते नहीं है पर इनके आंख से लगता है, अरे बाप रे, इससे अच्छा वो डांटे, पर ऐसा इनकी दृष्टि, इनकी नजरे ऐसे हैं बस जैसे कि वो मार रहे हैं जीते जी है, चेहरा ऐसा बनाएंगे, आंखें ऐसे बनाएंगे तो अगला व्यक्ति को लगेगा पता नहीं, इससे अच्छा वो चार बोल करके अपना गुस्सा उतार ले, वो ये तो घंटों तक ऐसा चेहरा कौन देखेगा, आते जाते यही चेहरा, तो डर जाएंगे लोग। सिर्फ डरा ही नहीं किसी को, अब डराते हैं कभी कभी दुख किसी भी प्रकार का दुख न दे। बाबा ये कहते हैं कि यदि हम चलो बोल हम अच्छे बोल रहे हैं मगर किसी के लिए गलत भावनाएं भी रखते हैं ना, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पहुंचता है। आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन वाइब्रेशंस, या यू नो व्हाट वाइब्रेशंस आर? वाइब्रेशंस वो होते हैं, अभी अभी फॉर एग्जांपल आप इस स्थान में आए, ये माउंट आबू आए हैं ना ज्ञान सरोवर में, अब ये है तो बिल्डिंग ना, दीवारें हैं सीमेंट मिट्टी का, जैसे और इमारतें बनाते हैं ये भी ऐसे बना हुआ है, पर यहां आते ही आपके मन के विचार अलग है, आपके अलग, आपको अलग अनुभव होता है, आपको अलग फीलिंग आते हैं। अब यहां से आप बाहर जाएंगे और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, पर यहां जो फीलिंग्स हैं वो और स्थान पे नहीं आएंगे। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते वहां की फीलिंग्स अलग है, वहां आप जो सोचते हैं वो अलग है, आप पार्टी में जाते हैं वहां अलग सोच है, और कहीं जाते तो जिस स्थान पे जाते हैं अलग अलग, क्यों? कि वहां रहने वाले जो सोचते हैं वो सोच का प्रकंपन उस स्थान को वैसा बनाता है। आप कई बार ऐसा होता है ना, दो तीन दिन लगातार आपके घर में यदि झगड़ा हुआ हो और जैसे आप ऑफिस से अंदर प्रवेश करेंगे आपको लगेगा पता नहीं घर के अंदर कैसा वातावरण होगा, ये वातावरण बन जाता है आपके सोच से। यहां का वातावरण ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां रहने वाले सोच अलग प्रकार के हैं, इट्स कॉल्ड एज वाइब्रेशंस। तो बेशक आप बोल कुछ नहीं रहे हैं मगर एक व्यक्ति के बारे में आप लगातार गलत सोचते हैं तो उस व्यक्ति के लिए वो वातावरण में खुद बना रही हूं और उस व्यक्ति को वो पहुंचता जरूर है। बेशक मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, पर ये सोच जो है इट वुड हैव क्रिएटेड एन एटमोस्फियर। ये भी दुख देना होता है, इसलिए कभी दुख नहीं देना। और बाबा ने और बात क्या कहा कि दुख लेना भी नहीं। चलो किसी ने दुख दिया पर आप क्यों लेते हो? क्योंकि समझो मैंने इनको डांटा, मैंने तो एक बार डांटा, आपको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, खराब लगा आपको बल्कि, पर मैंने तो एक ही बार डांटा ना, पर आप उसको 100 बार याद किया, ये बहन जी ने मुझे ऐसा कह, ऐसा शब्द कह दिया, ऐसा शब्द कह दिया। तो जितने बार आप सोचेंगे अपने आप को उतना दुखी बना रहे हो। मैंने एक बार दुख दिया पर उसको सोच सोच करके आप अपने आप को 100 बार दुखी बनाया, तो सबसे ज्यादा गलत किसने किया? मैंने किया? आपने? गलत करने वाला एक बार करके जाता है, पर वो गलत के बारे में सोच सोच करके आप बहुत ज्यादा 100 गुना गलत करते हो। वो एक बार किया। कई लोग ये भी कहते हैं मैं मरने तक ये बात नहीं भूलूंगा। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी मैं नहीं भूलूंगा। अरे जिसने बोला वो खुद मर गया, पर आप उस बात को नहीं भूल रहे हो। लॉस किसका भाई? क्योंकि वो तो मर गया शांति से, उसको तो याद भी नहीं है, पर आप याद कर करके आप अपनी जिंदगी भर याद रखते हो। हु इज एट लॉस? लॉस किसका? आप ही का ना। तो आप दुख ले रहे हो, उसने जिसने दुख दिया वो दिया कि नहीं दिया जो भी है, पर आप खुद स्वयं दुख अपने आप को ले रहे हो। इस प्रकार से आप दिन भर में देखिए आप अपने आप से कितना हिंसा करते हो। दुख देना हिंसा है। आप अपने आप को कितना दुखी कर रहे हो, आप अपने आप को कितना हिंसा दे रहे हो, ये अच्छी बात है। जिससे बहुत प्यार होता है उनको कष्ट में देख सकते हैं? कष्ट में देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। उनकी कोई गलत बात देख सकते हैं? हाँ या नहीं? नहीं। यदि आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने आप को दुखी क्यों करते हो? यदि आप अपने आप से आप प्यार करते हो तो आपकी अपनी गलतियां क्यों संभाल के रखे? इसलिए हम दूसरों से प्यार करने की बात बाद की बात है, पहले अपने आप से तो प्यार करें, अपने आप के साथ संबंध पहले जोड़े, तब हम दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं। जब कभी भी संबंध की बात आते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं हम दूसरों के साथ जोड़ने की प्रयास करते हैं, दूसरों के साथ जोड़ने का ही संबंध होता है, ऐसा नहीं। रिलेशनशिप बिगिन्स, संबंध अपने आप से शुरू होता, अपने आप से पहला संबंध जोड़िए। और लास्ट बात है, लास्ट बात, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप परिवार में रहते हैं, चलो किसी का गलत हो गया, किसी ने कुछ कर भी दिया, अरे आपका दिल तो बड़ा करिए, क्षमा करिए। आप अपने दिल में छोटी सी बात को क्यों सोच सोच के बड़ा करते रहते हो? इतना बड़ा दिल में इतनी छोटी सी बात के लिए जगह दे करके इतना बड़ा दिल को खराब क्यों करना? इसलिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, भूल मुझसे भी होता, भूल आपसे भी होती, नो प्रॉब्लम। क्षमा कर, क्षमा करना, ईश्वर क्षमा का सागर है, तो क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आप अपने आप को बड़ा बनना चाहे या छोटा बनना चाहे, इट्स योर चॉइस। और कई बार हम कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैंने आपको क्षमा कर दिया, मगर भूलते नहीं है, वी डोंट फॉरगेट। जब भी आते ना बोलते बेशक नहीं है, पर हमें पूरा रील घूम जाता है, देखा इसने ये किया, ये किया, यही तो आ रही है वो लाल साड़ी वाली, अरे इसी ने तो ऐसा किया था, बहुत किया था इसने ऐसे, बात मत पूछो, देखने लिए ऐसी लगती है, दिखती ऐसी है, खतरनाक है, ऐसी ऐसी बात बोली, शुरू पूरा शुरू हो जाता है। चलो भूल है ना, भूल तो एक बार होता है, दो बार हो गया होगा, आप भुला दीजिए। आप जब तक भूल को भुला नहीं देंगे, वो व्यक्ति भूल करता ही रहेगा, क्योंकि आप ही नहीं भूल रहे हो, इसलिए भूल जाइए। हम छोटी छोटी बात भी नहीं भूलते हैं, बड़ी बात तो छोड़िए। बोलने के लिए कहते हैं ठीक है हमने क्षमा कर दी, पर क्षमा करने वाला मन से भी निकाल देता है, तब इसको क्षमा कहा जाएगा। अब बात को मन में रखो और ऊपर से कहो हमने क्षमा किया, वो क्षमा नहीं है, समझा? इसलिए किसी के लिए भी एक प्रकार का एक इंप्रेशन हमेशा के लिए क्रिएट मत करिए। जैसे ये बहन जी सबके लिए शरबत देने के लिए कांच की ग्लास ट्रे में लेके आ रही है, हाँ, अब यहां वो ट्रिप हो गई, ट्रिप होके सारे ग्लासेस गिर गए, चूर चूर हो गए। अब दोबारा वो बहन जी आई ट्रे लेके, उसको देखते सबसे पहला आपके मन में क्या सोच आएगा, वो आई वो ग्लास तोड़ी थी ना, वो आई बहन जी। और जब भी वो बहन जी आएगी आप वही याद आएंगे, अरे जिसने शरबत की ग्लास तोड़ी थी, बस वही। जैसे कि वो शरबत ग्लास तोड़ने लिए जन्म लिया हो, हमेशा वो शरबत की ग्लास तोड़ती रहेगी क्या? पर एक छोटी सी बात के लिए आपने उस बहन जी के ऊपर एक इंप्रेशन बना दिया कि ये शरबत ग्लास तोड़ने वाली है, दोबारा लेंगे आपको लगे अब दोबारा बस अभी तोड़ा अब तोड़ने वाली है। अरे एक बार टूट गया तो क्या हो गया? इसलिए किसी ने एक बार कुछ किया तो इंप्रेशन नहीं बनाना, हो गई गलती, इंसान है ना, हो गई, पर दोबारा ना करे। इसके लिए हमें उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखे। शुभ भावना बहुत बड़ी दवाई है, दवाई का काम करेगा। जो आप बोल करके नहीं ठीक कर सकते, किसी के लिए शुभ सोच करके वो ठीक कर सकते। इसलिए परिवारों में रहते हैं क्षमा भाव बहुत बड़ी बात है। और लास्टली लेट गो ऑफ ईगो, अभिमान को छोड़िए। अभिमान ऐसी है कि परिवार के परिवार को बर्बाद करके रख देगा। छोटी सी बात, छोटा सा शब्द सॉरी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। पर हम नहीं बोलेंगे, अरे हम मैं क्यों बोलो सॉरी, गलत इसने की थी ना, उनको बोलिए बोले सॉरी, मैं क्यों बोलूंगी सॉरी। तो ये सॉरी एक दूसरे को बोलने लिए सालों साल बीत जाता है, पर एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते। बात है कुछ नहीं, अभिमान बीच में आता है। ये अभिमान में परिवार में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाते हैं। इसलिए प्लीज, क्या ले जाएंगे हम, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? रहे हुए थोड़ी जिंदगी में क्यों अभिमान करें, क्यों ईर्ष्या करें, क्यों द्वेष करें? ले तो कुछ जाना नहीं, खुशी से रहें, प्रेम प्यार से रहें, ऐसी रहें लगे कि ये परिवार तो स्वर्ग है, प्रेम की गंगा बह रही है, बस चले जाएंगे हम सभी। लेके तो कुछ आए नहीं, लेके तो कुछ जाना नहीं। पकड़ के बातें को क्यों पकड़ के रखना, छोड़िए, सोके। चलो मैं ही छोटी, भाई कोई बात नहीं, आप बड़े, बस ठीक, आप बड़े हैं हम छोटे, छुट्टी। छोटे हो जाने से कोई छोटे नहीं होंगे, छोटे नम्र रहने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं वो झुका हुआ होता है, जिस पेड़ में फल ही नहीं होता वो अकड़ के रहता है, क्योंकि अभिमानी होता है, क्योंकि उसमें खाली है। अभिमानी, अभिमान जिसमें है उसके अंदर खाली है, खोखला है। जिसके दिल भरा हुआ है, बड़ा दिल वाला है, वो हमेशा नम्र रहता है, झुका हुआ रहता है। तो आप बोलिए, आपको अकड़ के मुर्दे जैसा रहना है, ये फल से भरा हुआ पेड़ झुका हुआ रहना है। अब जवाब आप खुद दे, मन में बोलिए, नो प्रॉब्लम, ओके। ओम शांति। एंड ये है छोटी छोटी बातें, मगर ये छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब जो जिंदगी गुजरा सो गुजरा, बट अब रहा हुआ थोड़े दिन हम बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी खुशमय सुख से प्रेम से गुजार सकते हैं। एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को वैल्यू समझ करके हम अपने जिंदगी को चला सकते हैं। और मैं आशा करूंगी आपके रहे हुए जिंदगी खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में प्रेम की गंगा बहे और बहुत अच्छी तरह से आपकी रहा हुआ जिंदगी व्यतीत हो। ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
Thank you very much and I'm very happy to meet you all. Om Shanti.